उत्साह से निश्चयात निश्चय से धैर्यात धैर्य से तत कर्म भक्ति के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात संपन्न करने से संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से स्वतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से सड़बी ही इन चहों से भक्ति ही भक्ति प्रसिद्धति अग्रसर होती है या सफल होती है। उत्साह निश्चय धैर्य तत कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते सड़बीर भक्ति प्रसिद्धति उत्साह निश्चय धैर्य तत कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति। बोलिए उत्साह निश्चय धैर्य तत कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति उत्साह निश्चय धैर्य तत कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतो वृत्ते सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति उत्साह निश्चय धैर्य तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति। अनुवाद: शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। एक, पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना। पांच, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छह, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ये श्लोक में छह चीजें बताई गई हैं कि जिनको अपनाने से हम भक्ति में दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं। तो पहला है उत्साह। सो भक्ति में उत्साहित रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि हम ऑर्डिनरी व्यापार करने जाते हैं तो हम उत्साहित होके जाते हैं। अगर व्यापार करने में उत्साह नहीं रखेंगे तो व्यापार सक्सेसफुल नहीं होगा। स्टडी करते हैं कोई, मुझको मास्टर डिग्री चाहिए, तो पहले से ही वो उत्साहित रहता है। ऐसा नहीं कि आखिरी साल में मैं उत्साहित रहूँगा और बाकी का काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य हम करें तो वो कार्य तभी सफल होता है जब हम उत्साहित हों। तो भक्ति में भी उत्साह जरूरी है, उत्साह। और प्रभुपाद जी यहाँ पहले तो भक्ति की परिभाषा हमको बताते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो उत्तम भक्ति रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, तो उत्तम भक्ति है अन्य अभिलाषा शून्य। भगवत प्रेम भगवत भक्ति के बिना जो अन्य अभिलाषाएं हैं उनको काट के उनको शून्य बना के, मतलब कि भौतिक अभिलाषा नहीं, भौतिक अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्य। और बाद में ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान को कर्म को छोड़ छाड़ के अनावृतम, मतलब कि ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं, ज्ञान कर्मा आदि, कर्म आदि अनावृतम। बाद में क्या अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण भगवान को जो अनुकूल है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो भगवान को जो अनुकूल है उसके मुताबिक भक्ति करना। अनुकूल अनुशीलन, अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलन, अनुशीलन करना मतलब सेवा का सेवन करना, कृष्ण भगवान का सेवन करना, कृष्ण भगवान की सेवा करना अनुकूल भाव से, जैसे गोपीगण अनुकूल भाव से और कहीं राक्षसों ने प्रतिकूल भाव से, तो अनुकूल भाव से कृष्ण भगवान का अनुशीलन करना उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति। तो ये भक्ति करने में हमको उत्साहित प्रोत्साहित होना चाहिए, उत्साह के बिना नहीं चलेगा। और भक्ति के लक्षण, भक्ति नौ प्रकार की है, वो भी प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति के नौ प्रकार है, श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का स्मरण करना, उनका पाद सेवन करना, अर्चन पूजा वगैरह आरती वगैरह करना, वंदन करना, दास्य भाव से सेवा करनी, सख्य भाव से सेवा करनी, और आखिरी में अपना जो भी कुछ है मानस देह गेह यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर आत्मनिवेदन करना, तो नवड़ा भक्ति है। तो प्रभुपाद जी उत्साह के बारे में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। उत्साह किसको कहलाते हैं, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उसको हम कहेंगे उत्साह। तो उत्साह ये निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, हमको जो भी चीज कृष्ण भक्ति में उपयोगी नहीं है उनको छोड़ना, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, और कृष्ण भगवान के संबंध में जो वस्तु है उनको अपनाना, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो ऐसे उत्साहित होना है हमको। तो पहले भी कहा गया है, जैसे कि पहले बताया गया है मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए तत तत कर्म प्रवर्तना। अत्यधिक उत्साह सब चीज़ों में जरूरत है, तो भक्ति में क्यों नहीं, भक्ति में भी उत्साह जरूरी है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए, असत संग त्याग। तो उत्साह निश्चयात, निश्चयात का मतलब है कि कृष्ण भक्ति करने में हम दृढ़ संकल्प हो, निश्चयता पूर्वक प्रयास करना चाहिए, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कि मैं भक्ति संपन्न करके ही रहूँगा, श्री कृष्ण भगवान का प्रेम संपन्न करके ही रहूँगा, एक ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो निश्चय करते हैं, मुझको ये चीज़ करनी है तो करते करके ही रहते हैं। इसी तरह भक्ति में भी दृढ़ संकल्प निश्चय होना चाहिए। और यह निश्चय को हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर एक है, वो है कृष्ण, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय, ऐसा नहीं कि गाड़ी ऑफ ट्रैक चले, ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हम कृष्ण भगवान में स्थित हो निश्चयता पूर्वक, निश्चय पूर्वक। शास्त्र साधु और गुरु के वाक्य से हम दृढ़ संकल्प निश्चित निश्चय हो, तो निश्चय दृढ़ निश्चय होना जरूरी है भक्ति में। मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूँगा, भगवान का प्रेम का संपादन करके ही रहूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जिनको ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। जिनको भी ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं है कि मैं श्री कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त बन के ही रहूँगा, ऐसा जिनको दृढ़ निश्चय नहीं है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। निश्चय धैर्य धैर्य धीरज भी होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति करने में धीरज होनी चाहिए। धीरज कोई भी चीज में धीरज होनी चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण यहाँ देते हैं कि कोई नई पत्नी शादी करके आई है तो वो बोलती है मुझको आज ही बेटा चाहिए, आज ही पुत्र चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। वो प्रयास कर सकती है और निश्चय भी कर सकती है, लेकिन समय आने से उनको पुत्र मिल सकता है। धैर्य धीरज होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति में धीरज की बहुत जरूरत है। कई लोग अधीर होते हैं तो वो साल दो साल कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना व्रत में आते हैं और चले जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं। तो धीरज होनी चाहिए, जैसे कि सबरी है बिलनी, तो रामचंद्र उनके गुरु ने, सबरी के गुरु ने, मतंग ऋषि ने सबरी को कहा था कि एक दिन आपको आपके राम आके दर्शन देंगे, तो हर रोज वो फल बटोर के लाती थी और रास्ता साफ करती, सारा आश्रम साफ करती थी, आज मेरे राम आएंगे। और तीस हजार साल के बाद, कई हजार साल के बाद रामचंद्र भगवान सबरी के, जब बूढ़ी हो गई, जो जब वो कन्या थी छोटी सी, तब उनको मतंग ऋषि ने कहा था, तो जब बूढ़ी हो गई तब रामचंद्र आए। धीरज, ऐसे धीरज रखना चाहिए। कभी ना कभी कृष्ण भगवान का मैं कृपा पात्र बनूंगा, कभी ना कभी कृष्ण भगवान मेरे पर कृपा करेंगे, दर्शन देंगे, प्रेम प्रदान करेंगे, तो यह धीरज उत्साह निश्चय धैर्य। निश्चय का मतलब है कि यही जन्म में हम शुद्ध भक्त बनेंगे, ये निश्चय है। यही जन्म में हम कृष्ण भगवान के दर्शन करेंगे, यही जन्म में हम कृष्ण भगवान का शुद्ध प्रेम संपादन करेंगे, ये निश्चय है। और ये निश्चय के बाद हमको धीरज चाहिए। अगर ये नहीं भी हुआ है जन्म में निश्चय संकल्प सिद्ध नहीं भी हुआ, तो भगत भक्त की कोई हानि नहीं है, दूसरे जन्म में जहां से रह गया वहां से शुरू करेगा। तो है निश्चय धैर्य तत कर्म प्रवर्तना, मतलब कि फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम तत कर्म प्रवर्तना, मतलब श्रवण कीर्तन करना, ऐसे अनुष्ठानों के मुताबिक कर्म करना, श्रवण कीर्तन स्पेशली श्रवण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है, श्रवण और कीर्तन। तो भक्ति ये श्रवण करने से शुरू होती है, जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई चोर घर में घुस गया रात्रि में, हम भर निंद्रा में हैं, तो हमारी सबसे अच्छी इंद्रियां हैं जो चोर को डिटेक्ट करेगी, वो है कान। थोड़ा सा आवाज या कुछ भी होगा कान से सुन के तुरंत हम खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये भक्ति में है, प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी के गुरु कहते थे कि ये बहुत अच्छा भक्त बनेगा, क्योंकि वो उनको श्रवण करने में दिलचस्पी है। तो श्रवण से भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। श्रवणम कीर्तनम तत्तत्त कर्म प्रवर्तना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण। तो ये नवडा भक्ति हम कई बार इनका सबका व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ये विषय यहाँ नहीं है। मतलब कि ये नवडा भक्ति हम रेगुलर करें तो भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। और पांचवा है अभक्तों की संगति छोड़ देना, मतलब ये संग त्यागा, संग का त्याग करना चाहिए। मतलब कि जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं है उनकी संगति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। पहले भी क्या कहा गया कि असत संग, पहले के श्लोक में भी कहा कि संग का त्याग करना चाहिए। जिनको संग जन संगस्य लोलियम से, जन आम जनता का संग का त्याग करना चाहिए। और यह भी कहा अभक्त की संगति छोड़नी चाहिए, इसलिए कि आप जिसकी संगति करोगे वैसे आप बनोगे। अगर आप फर्स्ट क्लास ड्रंकार्ड बनना चाहते हो तो शराबी का संग करोगे शराबी बन जाओगे। इसी तरह अभक्त अगर होगा उनकी संगति आप करोगे तो अभक्त बन जाओगे, भक्ति से गिर जाओगे। इसलिए संग त्यागा सतो वृत्ते, मतलब कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, तो उसको बोलते हैं सतो वृत्ते। तो कहीं हमारे आचार्यों ने सब कुछ निश्चित करके रखा है, हमको कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। उनके चरण चिन्हों में चलेंगे तो हम शुद्ध भक्त बन ही जाएंगे। सतो वृत्ते सताम प्रसंगा मम वीर्य संविद सताम सतो वृत्ते। सो परा परास्य शक्ति विनिधैव सूयते, पर इस परमेश्वर की शक्ति विविधैव सूयते, बहुत मल्टीफेरियस एनर्जी। भगवान की बहुत किस्म की शक्तियाँ हैं, लेकिन उनमें तीन प्रकार की शक्ति मुख्य है। वो है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति एंड तथस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति का मतलब है कि भगवान के धाम में जो योग माया या तो योग माया के रूप में है, मतलब कि वो शक्ति जो हमको कृष्ण जीव को कृष्ण भगवान के नज़दीक ले जाती है, तो उसको बोलते हैं अंतरंग शक्ति। बहुत परिभाषा कर सकते हैं, अंतरंग शक्ति से भगवान का जगत चिन्मय जगत बना है, अंतरंग शक्ति भगवान की आलादिनी शक्ति वगैरह वगैरह कई विस्तृत रूप से समझा सकते हैं। लेकिन अभी समझ लो कि वो शक्ति जो हम जीव को भगवान के नज़दीक ले जाती है अंतरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति माया है, महामाया, जिससे भौतिक जगत बना है या भौतिक जगत की अधिष्ठता देवी, कंट्रोलिंग पावर इन मटेरियल वर्ल्ड, दुर्गा जिसको कहते हैं। तो माया शक्ति वो शक्ति है जो जीव को भगवान से दूर ले जाती है। और तथस्थ शक्ति है जो भेदा भेद प्रकाश, तथस्थ शक्ति वो शक्ति है जो कई बार योग माया में तो कई बार महामाया में, तो कई बार योग माया कई बार महामाया, तथस्थ शक्ति। तथस्थ शक्ति का उदाहरण ले सकते हैं कि ये जमुना नदी है और जमुना जी का पुलिंग जो है, पुलिंग मतलब रेत, भीगा हुआ रेत, उसको पुलिंग कहते हैं। तो ये पुलिंग और प्रवाह के बीच में जो नदी का किनारा बनता है, पानी का किनारा, पानी का किनारा जो बनता है, वो पानी की धार जो किनारे पे बनती है वो तटस्थ शक्ति के मुताबिक है। कई बार रेत में है, कई बार पानी में है, कई बार रेत में है, कई बार पानी में है। हाँ, तो तटस्थ शक्ति कहते हैं उसको। हाँ, और कुछ प्रभु? ठीक है, ठीक है। तो श्लोक संख्या 3 पेज 27, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत कर्म प्रवर्तनात संग त्यागात सतो वृत्ते सड़वीर भक्ति प्रसिद्धति। सो संग त्यागात सतो वृत्ते, सो वी हैव टू अबैंडन द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटीज। तो नॉन डिवोटीज जो अभक्त नहीं अभक्त है उनका संग त्यागना चाहिए। तो क्यों ऐसा? क्योंकि अगर हम कोमल श्रद्धा वाले हैं तो हम भटक जाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी ने दोनों श्लोक में भक्ति विनश्यति संग करने से, असंग संग त्यागात सतो वृत्ते, एंड वहां भी कहा कि संग त्यागात। हाँ, जन संगस्य लोल्यम च, जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं है उनका त्याग करना चाहिए। तो संग त्यागात मतलब कि प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि जिनको कृष्ण भक्ति में रस नहीं है, तो किसको रस नहीं? निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, भौतिक भौतिकतावादी, शुष्क वैज्ञानिक लोग, और जो कर्म प्रधान फिलसूफी या ज्ञान प्रधान फिलोसॉफी जो चलाते हैं, तो उन लोगों को त्याग करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि इट इज बेटर टू बी विथ टाइगर इन ए केज देन टू बी विथ मायावादी, शुष्क वेदांतिस्ट और शून्यवादी, क्योंकि ये लोग कृष्ण के अपराधी हैं। मायावादी कृष्ण के अपराधी। तो इसलिए संग त्याग, संग का त्याग करना चाहिए। सतो वृत्ते, वेरी इंपॉर्टेंट, सतो वृत्ते, सतो सता, सताम प्रसंगात, सता सता मीन्स सेंटली पर्सन, साधु। सो सतो वृत्ति आचार्य गण, तो आचार्य गण के चरण चिन्ह हमें चलना चाहिए। अपनी मनमानी छोड़ के जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमारे लिए जो सिद्धांत बनाया है उनका पालन करना चाहिए। जैसे मैंने कल कहा था कि कई भौतिकतावादी मायावादी लोग ऐसा कहते हैं कि ऊपर मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी चाहिए, जीना चाहिए। तो जीने के एक पगत फर्स्ट जीने पे हम फर्स्ट सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, आखिरी सीढ़ी पे और मंजिल पे पहुंच गए। बाद में सीढ़ी की जरूरत नहीं, किक द सीढ़ी आउट, सीढ़ी को फेंक दो। तो कई मत मतांतर ये समझते हैं, तो ये गलत है। यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं सतो वृत्ते, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, ये छह है। ठीक है, मैंने ठीक ही कहा, ये प्रभुपाद भी यही भाषांतर करते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों को ठुकरा देंगे तो हमारी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि है कृष्ण प्रेम, ये सिद्धि है। हमको चाहिए कि हम रसिक भक्त बने, कृष्ण भगवान के हम रसिक भक्त बने। प्रेम ते सब स्थाने हेरिबो हमी प्रणय भक्त संगे, प्रणय भक्त, प्रणय भक्त संगे मतलब कि जिनके हृदय में कृष्ण भगवान के लिए पूर्णतया प्रेम जागृत हो चुका है। तो ये तो तभी होगा जब पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों में हम चलेंगे, जो भावुक थे, कृष्ण प्रेम की संपूर्णतया प्राप्ति की थी। तो इनका संग करना और जन का संग छोड़ना, तो सता सतो वृत्ते, उनके चरण चिन्हों में चलना। बड़े बड़े आचार्यों का वचन का लोप करना या वचनों को कम मात्रा में समझना, ये हमारे फॉल डाउन का कारण हो सकता है, कारण ही होगा। और हमको अगर प्रगति करनी है, और वो भी बहुत तेजी से प्रगति करनी है, तो जितना हम उनका वचन का पालन करेंगे इतनी प्रगति होगी। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिय आक्य आरना करिय मुने आसा। गुरुजनों का मुख पद्म वाक्य ये मेरी जीवन मरण गति है, तो इससे हमारी बहुत तेजी से प्रगति होती है। बड़े आचार्यों ने ये कहा, तुरंत कर दिया, अपनी मनमानी या अपनी बुद्धि या स्पेकुलेशन ये सब छोड़ छाड़ के आचार्यों के शब्द में पूर्णतया श्रद्धा, और तुरंत वो करना। अगर हम तुरंत करेंगे, हमारे जैसा शुद्ध भक्त कोई नहीं हो सकता, इतनी जल्दी प्रगति होगी। क्योंकि वैसे भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बहुत महान पूर्ववर्ती आचार्य, ये संप्रदाय में शुद्ध भक्तों की खान है। एक एक आचार्य एक एक से बड़े हैं, इतने सुंदर आचार्य इस संप्रदाय में है। तो ये है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों में चलना, और उनको ही हम महात्मा कहेंगे। महात्मा वो है जो पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों में चलते हैं। तो ये छह चीजों से क्या होता है, हमारा भक्ति में बढ़ावा होता है, प्रगति होती है। सड़बीर भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति में हम सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध, हम प्रसिद्ध हो जाते हैं, भक्ति में स्थित हो जाते हैं, कभी भी हमारा पतन नहीं हो सकता। ये छह चीजों को अपनाएंगे हम, तो भक्ति में कभी भी हमारा पतन नहीं हो सकता।